आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के अगले 5 वर्षों में 12 लाख नए घर बनाने के लक्ष्य से देश अब पीछे चल रहा है। इस सप्ताह जारी होने वाले नए आधिकारिक आंकड़ों से ये तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बुधवार को निर्माण गतिविधियों के ताजा आंकड़े जारी करेगा। हालांकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी, मकानों की बढ़ती कीमतों और निवेशकों के लिए टैक्स रियायतों में बदलाव से संपत्ति बाजार की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन आवास निर्माण में बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के वरिष्ठ अर्थशास्त्री टॉम डेविड के अनुसार मार्च तिमाही में भी नए घरों के निर्माण की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने न्यू साउथ वेल्स लेबर सम्मेलन को संबोधित करते हुए टैक्स सुधारों और जलवायु परिवर्तन नीतियों के विरोध पर विपक्षी गठबंधन की आलोचना की है। विपक्ष नेता एंगस टेलर का कहना है कि गठबंधन सत्ता में आने पर नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को समाप्त करेगा और आयकर व्यवस्था में ब्रैकेट क्रीप को भी खत्म करने का वादा कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी का कहना है कि उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य तय करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है। वहीं दूसरी ओर न्यू साउथ वेल्स में बर्ड फ्लू के सबसे घातक स्ट्रेन H5N1 का पहला मामला सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने पोल्ट्री उत्पादकों से एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। राज्य की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जोकूम का कहना है कि संक्रमित पक्षियों की पहचान के लिए जमीनी टीमों, ड्रोन और नौकाओं की मदद से निगरानी तेज कर दी गई है। अब तक H5N1 वायरस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स में कुछ 6 जंगली पक्षियों में पाया गया है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोग सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशाल खुले प्रार्थना परिसर में जुटे। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत में हुई हवाई हमलों में खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। काले कपड़े पहने और ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे शोकाकुल लोग खामेनेई और उनके उत्तराधिकारी माने जा रहे बेटे मोस्तफा खामेनेई की तस्वीरें लिए दिखाई दिए। ईरान इस्लामिक रिपब्लिक के प्रति सार्वजनिक निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले राजकीय अंतिम संस्कार समारोह को आयोजित कर रहा है। वरिष्ठ नेताओं और विदेशी प्रतिनिधियों के दर्शन के बाद खामेनेई का ताबूत उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूतों के साथ खुले परिसर में जनता के दर्शन के लिए रखा गया। और अंत में खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव इंडोनेशिया माना जा रहा है, जहां भारत और इंडोनेशिया के बीच बहुप्रतीक्षित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौदे पर मोहर लग सकती है। ये समझौता भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। इसके साथ ही इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस प्रणाली अपनाने वाला तीसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन सकता है। रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे दक्षिण चाइना सी क्षेत्र में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी और चाइना के बढ़ते सैन्य प्रभाव के बीच क्षेत्रीय देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमता को बल मिलेगा। दौरे के ऑस्ट्रेलिया चरण में भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसी के साथ 5 जुलाई 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।